ओम शांति।
तो वैसे तो पिछले 3 दिन से पॉजिटिविटी पूरे सभी पॉजिटिव हो ही गए हैं, यहाँ तो नेगेटिविटी है ही नहीं। लेकिन हम यहाँ ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो गाड़ी की ट्रेनिंग करते हैं ना, तो उस समय क्या होता है, रोड खाली होता है और फिर ट्रेनिंग करके फिर वो ट्रेनिंग को भरे रोड में अप्लाई करना होता है। दैट इज कॉल्ड परफेक्शन, दैट इज कॉल्ड ट्रेंड। तो इसी तरह अभी तो हमारे सामने ज्यादा कोई सिचुएशन है नहीं, ना ट्रैफिक जैम है, ना लोग ऐसे हैं, ना रिलेटिव्स है, तो अभी तो बहुत इजी है पॉजिटिव होना। लेकिन हम ये सब सीख किस लिए रहे हैं कि फिर वहां जाके उसको कैसे यूज करना है। तो अब माइंड जितना पॉजिटिव उतना पावरफुल होता है। पहले क्या चाहिए, पॉजिटिव या पावरफुल? राइट, पॉजिटिव और पावरफुल, क्या सीक्वेंस होगा? पहले राइट थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स एंड पावरफुल थॉट्स। तो जितना मेरे थॉट्स में पावरफुल पावर रहेगी उतना वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव रहेगा। सो ब्रह्मा कुमारी इसका फोकस पॉजिटिव थिंकिंग तो बहुत हम सुनते हैं, बहुत है, लेकिन मेन है पावरफुल थिंकिंग। तो उसके लिए कौन कौन से थॉट्स हमें करना है और किस तरह उसको मैनेज करना है, आज हम थोड़ा टेक्निक समझते हैं। तो सबसे पहले जब हम पॉजिटिव थॉट्स कहते हैं, सबसे नॉर्मल हमारा तरीका क्या है, कोई भी सिचुएशन में रिएक्शन, कुछ भी बात होती है तुरंत इनर रिएक्शन तो हो ही जाता है। तो रिएक्शन का मतलब ही क्या हो गया, अगर उसका जैसा भी वाइब्रेशन है उसी वाइब्रेशन से एक्ट करना, रिएक्शन। एंड देयरफॉर रिएक्शन का मीनिंग क्या होगा कि मैं कहती हूं कि क्या करे, बोलना नहीं चाहता है लेकिन पता नहीं कैसे निकल गया। तो व्हेन वी से उसने ऐसा किया इसलिए मैंने ऐसे बोल दिया, मतलब पावर उसके पास है। रिएक्शन का मतलब ही है उसके हाथ में मैंने पावर दी, तो मेरे माइंड की पावर उसके पास है। तो उसने जैसे किया वैसे मैंने कर दिया। अब ऐसे अगर हम अपने आप को कहे कि मेरा रिएक्टिव नेचर है या उसका रिएक्टिव एक संस्कार है, तो इसका मतलब हर कोई के हाथ में मेरे माइंड की पावर है। मीन्स मेरे माइंड का रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में है। मतलब जिसके हाथ में रिमोट कंट्रोल होगा वो जैसा चाहेगा वैसे वो देख ही सकता है, वो सीन, वो एपिसोड, वो सीरियल वो देखेगा ना। तो देयरफॉर सेइंग रिएक्शन, रिएक्टिव मतलब गिविंग द होल पावर टू देम। और अगर हम सारे दिन में अपनी पावर पूरे दिन में देते जाएं, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा कहा, इवन इफ मैं वैसे कर नहीं रही हूं, वो बहुत क्रोध से बात करता है, मैं वैसे कर नहीं रही हूं लेकिन मुझे थॉट चलता जा रहा है, बहुत गुस्से वाला है, बहुत गुस्से वाला है, तो रिएक्टिव है, तो भी रिएक्टिव कहेंगे क्योंकि उसके क्रोध के वाइब्रेशंस कोई तो मैं एक्ट करती जा रही हूं, बोल नहीं रही हूं। सो व्हेन देयर इज अ रिएक्टिव नेचर, मतलब मेरी पावर दूसरे के हाथ में है, आई एम देयरफॉर वेरी पावरलेस. इसलिए जो रिएक्टिव होगा वो अपनी शक्ति से नहीं चल सकता, उसके पास अपनी शक्ति नहीं है. और जो दूसरे की शक्ति से चल रहा है तो दूसरा एक तो जैसा चाहे वैसे करेगा, और मतलब अपने आप को डिवॉइड करना पावर से, यूज ही नहीं करते. आपके पास गाड़ी में जैसे मोबाइल में होता है ना, सारे फीचर्स है, लेकिन पता ही नहीं है तो क्या होगा. दूसरा आके यूज कर भी ले हमारे, लेकिन मुझे तो उसका फायदा नहीं होगा ना. सो देयरफॉर रिएक्टिव, नो रिएक्टिव नेचर, देन ओनली आई कैन बी पावरफुल. अब इवन इसमें अगर हमने थोड़ा सा ये भी कह दिया कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये थॉट्स क्रिएट करते हैं, मतलब क्या कर रहे हैं हम, बार बार माइंड में ये वाले थॉट्स हो रहा है, इसका मतलब बार बार अपने आप को इंजर कर रहे हैं, कॉजिंग इंजरी टू योरसेल्फ. अब आप कहेंगे नेचुरली दिखाई ऐसा देता है तो सोचेंगे ना ऐसा, जैसा दिखाई देता है वैसे सोचते हैं या हम देखते ही ऐसा है. एक बार हमारे पास एक फोन आया एक ब्रदर का, तो वो कहता है मैं अपनी डॉटर को लेकर आना चाहता हूँ, 12 इयर्स की डॉटर है और वो 3 सब्जेक्ट्स में फेल हो गई, तो समथिंग प्रॉब्लम विद द माइंड, और जरा प्लीज आप उससे बात करना, थोड़ा काउंसिल करना है. ठीक है, मदर लेकर आई डॉटर को, तो मदर ने कहा लेट मी फर्स्ट टॉक अबाउट दिस गर्ल. बोलने लगी ऐसा है, पहले ऐसे थी, इतना फर्स्ट रैंक आता था, ऑलवेज गुड, लेकिन अभी इतना ऐसे होने लगी, कभी मानती नहीं है, ऑल दोज थिंग्स. एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन मदर ही बोलती जा रही है. हमको लगा मदर को काउंसलिंग की जरूरत है. अच्छा, 4th डे वो ब्रदर ने फोन किया कि आज है ना वो मेरी वाइफ नहीं आ सकती है. तो 3rd डे जब वो बोल रही थी तो बाद में उसने कहा कि बहन जी आप पूछो कि इसको कि ये मैथ्स लेगी या साइंस लेगी. तो पूछा रम्या आप साइंस लेना है मैथ्स लेना है, नो एक्सप्रेशन. बहन जी पूछो ये मेडिटेशन करेगी या नहीं करेगी. रम्या मेडिटेशन करोगे, नो रिएक्शन. बहन जी देखा ना ये ऐसे है. ओके अच्छा, 4th डे द फादर केम, कहा कि आज मेरे वाइफ कुछ कारण से नहीं आ सकती, मैं लेके आता हूं इसको. ठीक है, आया, बोले 10 मिनट्स आई जस्ट वांट टू, आपको वैसे तो 3 दिन में ब्रीफिंग मिली गई होगी. हमने कहा बहुत ब्रीफिंग मिल गई डॉटर के बारे में. अच्छा, तो बोला कि मैं 10 मिनट्स में बताता. 1992 9:40 AM मेरे घर में एक गोल्डन मोमेंट्स शुरू हुआ रम्या, और शी इज सच अ जेम, इतनी ओबीडियंट, इतनी समझदार, इतनी सेंसिबल, ऑलवेज इन हर लाइफ उसने मेडल्स जीता, ऐसे किया, ये किया, एवरीथिंग व्हाट ऑल पॉजिटिव उसके थे. बस बोलता गया कि मेरे लिए तो जैसे घर में देवी आई है, आई जस्ट कैन नॉट थिंक एनी थिंग अदर देन दैट टू हर. वो 10 मिनट के बाद में वो डॉटर फादर का हाथ पकड़ लिया, बोला डैडी आप जो बोलोगे मैं करूंगी. आपको मैं करके दिखाऊंगी। क्या चाहिए, क्या चाहिए? हमारा चॉइस किस पे है? उसके पास पॉजिटिव भी था, नेगेटिव भी था, लेकिन किस पर मेरा फोकस है? दैट इज व्हाट आई एनकरेज। नॉट ओनली व्हेन आई जस्ट स्पीक अबाउट इट, लेकिन अगर मैं उसको बार बार सोच रहा हूं, मैं उसको एनकरेज कर रहा हूं। तो जितना हम उसके पॉजिटिव के बारे में फोकस करते जा रहे हैं, हम उसको एनकरेज कर रहे हैं। और उसको एनकरेज कर रहे हैं मतलब अपने आप को पावरफुल बना रहे हैं। जब हम बहुत अच्छा अच्छा बोलते हैं, एक ब्रदर था, उसमें उसकी नेचर थी वेरी मच इन दिस नॉलेज, घर में जो भी है ना उसको एक बहुत हाई वर्ड्स में, वाइफ को क्योंकि इस दिस नॉलेज में है कि ये बहुत एलिवेटेड सोल है, महान आत्मा है, उसको महान आत्मा के रूप में बुलाते थे। अच्छा, जो डॉटर है ये देवी है, ये देवात्मा है, उसके रूप में बुलाते थे। मतलब सबको एक बहुत हाई वर्ड्स से बुलाना एंड वो फील करना। तो वो वाइफ कहती है कि सारे दिन में हमने क्या सुना, यू आर एलिवेटेड सोल, एलिवेटेड सोल, आप इधर आओ, एलिवेटेड सोल। तो वो क्या बन गए, बोला हम महान बनी गए। तो जो हम बोल रहे हैं, सोच रहे हैं, वो उसके उसको बना रहे हैं। एक्चुअली हम सोचते नहीं, सामने बहुत अच्छा बोलो, बहुत प्यार से बोलो, लेकिन इधर कुछ भी चलेगा, पॉसिबल है? टू मैसेजेस जा रहा है, इधर से भी एक मैसेज जा रहा है, इधर से भी एक मैसेज जा रहा है। ज्यादा क्वांटिटी किसकी है, किसकी ज्यादा क्वांटिटी? इसकी, इधर का मैसेज जा रहा है, ये तो कुछ काम नहीं करती है, ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है, फॉर एवरीबडी। फिर हम कहते हैं रिलेशनशिप को है ना बना के रखना चाहिए, क्या पता कभी कोई भी काम में आ जाए। रिलेशनशिप बना के रखना चाहिए, रिलेशनशिप मुझे काम में आएगा या मेरे कर्म मुझे काम में आएंगे? अगर मेरे कर्म श्रेष्ठ है ना और काम होने वाला है ना, तो अगर स्ट्रेंजर भी होगा ना वो मुझे ऐसी हेल्प करेगा जो मैं सोच नहीं सकती। और अगर मेरे कर्म अच्छे नहीं हो, सारे संबंधी मेरे आसपास हो, नो वन कैन हेल्प मी, सो व्हाट शुड आई डू? हम कहते बना के रखो, बना के रखो। तो दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। तो देयरफॉर मैनेजिंग थॉट्स मतलब मैनेजिंग माय फीलिंग्स, व्हाट आई एम फीलिंग। अच्छा, आप कहेंगे कि सपोज 35 गुण है, 35 अवगुण है, एक गुण है, तो कैसे, किस पर फोकस करें? एक गुण है, अगर मेरा वो फोकस एक पर होता है ना, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, क्योंकि मेरा फोकस है कि ये देखो और कुछ नहीं, बहुत ओबीडियंट है, बहुत ओबीडियंट है। एक्चुअली व्हेन आई थिंक गुड ऑफ अदर्स, उसमें कितना आता है लेता है वो अलग बात है, लेकिन सबसे पहले किसको मिलता है? सबसे पहले मेरे माइंड को मिलता है, दूसरा मेरे शरीर को मिलता है, और तीसरा मेरे वाइब्रेशंस, मेरे आसपास के एटमॉस्फेयर को मिलता है। सो व्हेन आई थिंक पावरफुल किसी के लिए, तो एक्चुअली सबसे पहले मैं क्या कर रही हूं, अपने माइंड को स्ट्रेंथन कर रही हूं। or therefore the body and therefore the atmosphere. और उस फिर किसको मिलता है? हमारे साथ रहने वालों को जो एटमॉस्फेयर मिलता है, दैट इज बिकॉज ऑफ व्हाट आई थिंक. एंड देयरफॉर उनको सिखाने की जरूरत नहीं है. हमारे पास एक कपल आते थे, डॉक्टर कपल है, एंड द वाइफ जो है वो बहुत मतलब बहुत क्रोधी. अब उसके कारण बहुत गुस्से वाले, तो ये कितनी सारी बातें इसलिए शेयर नहीं करता है. अब शेयर नहीं करता है, कहां कहां शेयरिंग से सॉल्यूशन बहुत जल्दी निकलता है. लेकिन जो गुस्से वाला होता है ना, उसे दूसरा डरता भी है, और डरने के कारण वैसे स्टॉप कर देता है. इसके कारण वो गलती हो जाती है, और उस गलती में सपोज और कुछ बिगड़ गया, तो वो कहता है कि देखो तुमने बताया नहीं पहले. अब इसमें वो ये नहीं देखती है कि मेरे क्रोध के कारण नहीं तो बता पा रहा है, लेकिन तुमने नहीं बताया ना. तो कई बातें वो इन्वेस्टमेंट्स करते थे और रॉन्ग इन्वेस्टमेंट होता था, घाटे में जाता था. अब उसको पता है जैसे बोलूंगा गुस्सा आएगा, बोलते नहीं थे. और फिर बाद में पता चलता, फिर तो यू कैन इमेजिन वोल्केनो हो जाता था. और फिर उस वोल्केनो के कारण दूसरा और चुप हो जाता था, ही इज गोइंग इन टू अ ककून. अब वो कई बातें शेयर नहीं करता था. तो उसने कहा कि अलग अलग हिज और हर से मीटिंग करी. तो वो चुपचाप से जब सेंटर पे आई, बोलने लगी, बोला एक्चुअली ना सारी गलती मेरी है, मैं बहुत गुस्सा करती हूँ, वही बोलने लगी. और ये एक्चुअली मेरा भी गुस्सा नहीं है. हमको याद आता है जब हम छोटे थे ना, तो हमारे डैडी जो थे ना, इतने गुस्से वाले थे. जैसे वो घर में आते थे, हम लोग सब अपने अपने कमरों में, बिकॉज कुछ पॉइंट मिलना चाहिए. एंड अच्छा, फिर डैडी से भी मैंने देखा, दादाजी ना बहुत गुस्से वाले थे. यू जस्ट इमेजिन, दादाजी का क्रोध आज कौन से बच्चे को मिल रहा है? तो व्हाट वी आर एमिटिंग इन वाइब्रेशंस, वो मैं पता नहीं कितने जनरेशंस को देती जा रही हूं, और कितना जनरेशंस उसको वो इफेक्ट होता जा रहा है. सो देयरफॉर मैं जैसे ही पावरफुल थॉट्स क्रिएट करती हूं, तो मैं क्या क्या कर रही हूं? उस समय मैं खुश हो रही हूं, मेरे शरीर में उसका इंपैक्ट हो रहा है इमीडिएटली, वातावरण में. एंड यू जस्ट डोंट नो बच्चे पर पता नहीं कितने जेनरेशंस में वो जा रहा है. सो पावरफुल थॉट्स मतलब ही आई एम इन्वेस्टिंग फॉर बर्थ्स जेनरेशंस. तो एक तो नो जेनरेशन पावरफुल, नो रिएक्शन, और दूसरा जितना भी हम अपने श्रेष्ठ कर्म, क्योंकि व्हाट आई एम क्रिएटिंग दैट इज व्हाट आई एम, जो मैं क्रिएट कर रही हूं वो मेरे वाइब्रेशन से, वो मेरे कर्म है. और जो मेरे कर्म है एक्चुअली क्या हो रहा है, वैसी मेरी भाग्य है. अब देखो ये टेबल है. मैं शाम को ऑफिस में सामने वो टेबल रख के चले जाते हैं. अब दूसरे दिन जैसे ही मैं एंटर करती हूं, मुझे उस टेबल से बहुत ठोकर लगती है. अब जैसी ठोकर लगती, मुझे याद नहीं मैं रखी थी, रखे चले गए। अब मैं क्या करूंगी, ब्लेम करूंगी, किसने रखा, क्या रखा। एक ना हमारे पास एक भाई आता है, तो नौकर चाकर होते हैं काम करने के, तो रात को फोन आया तो फोन उस तरफ पड़ा था, लैंडलाइन फोन, तो इधर लेके आए तो टेबल को भी लेके आया, तो टेबल पे फोन रखा, बातचीत की, फोन रख दिया, सो गए। सुबह उठते ही पता नहीं था टेबल है, ठोकर लगी। जैसे ही ठोकर लगी, ह्यूमन टेंडेंसी, नौकर चाकर को चिल्लाने लगा, ये तुमको समझ में नहीं आता, ऐसे किया ऐसे किया। चुपचाप से वाइफ बोलती है, कल रात को फोन आया था ना, उस समय टेबल आपने रखी थी, अब क्या हो जाएगा। एकदम चुप। जैसे ही मुझे पता चलता है मुझे जो मिल रहा है मेरे ही कर्म है, मेरे कितना ब्लेम गेम स्टॉप हो जाता है। एंड देयरफॉर मैंने एक्चुअली जिस समय वो टेबल रखी उस समय ही मैंने क्या कर दिया, मैंने अपना नेक्स्ट मिनट का भाग्य निश्चित कर दिया कि मुझे ठोकर लगने वाली है। इट इज नॉट कि जब मिलेगा, आई राइट माई डेस्टिनी दैट मोमेंट, जिस दिन मैं क्रिएट करती हूं। तो अब और अगर मिल भी गया, अगले दिन मैं आई, मुझे ठोकर लगी, और ठोकर लगने के बाद एक तो याद नहीं कि मैंने रखा, और ऊपर से उस समय मैं ब्लेम करती रहूं दूसरे को, तुमने ऐसा किया तुमने, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे फर्स्ट वाले कर्म का रिजल्ट तो मुझे मिल रहा है, लेकिन उसके साथ ही मैं दूसरा और कर्म क्रिएट कर ली। पहले वाले का रिजल्ट मिल रहा है जो नॉट सो प्लेजेंट है, और साथ साथ में अगला भी क्रिएट करती जा रही हूं। तो जितनी बार मैं जो जो थॉट्स क्रिएट कर रही हूं, कर्म की स्टार्टिंग भी कहां है, थॉट्स सीड, तो जो मैं क्रिएट कर रही हूं अभी, उतना मैं क्या करती जा रही हूं, अपना डेस्टिनी लिखती जा रही हूं। सो जब डेस्टिनी आएगी, एक्चुअली वो अलग बात है, बट आई एम, मैं अभी रीड कर रही हूं, मैं अभी लिख रही हूं। ये अवेकनिंग हमारे बहुत सारे कर्मों को हेल्प करता है, नेगेटिविटी को स्टॉप कर सकता है, कि मैं जो क्रिएट कर रही हूं वो मैं लिख, और एक बार मैंने लिख दिया, इसलिए क्या कहते हैं, लिखत को कोई भी मेट नहीं सकता, बोलते हैं ना, वो लिखा के लाए हैं। जब वो लिख दिया, इट्स इमॉर्टल, कुछ भी कितना भी कहीं भी चले जाओ, जो लिख दिया वो आएगा। इट्स लाइक एन SMS। हम कहे कि भाई SMS दे दिया तो वो कहीं भी हो, इट डजेंट मैटर कि भाई विदेश में तो SMS नहीं जाएगा, इधर बाजू में होगा तो जल्दी जाएगा, उसको जाएगा ही। So what I have created, that I have written. ये राज को जब हम समझ ले, हम always क्या क्रिएट करेंगे, जो मुझे अच्छा लगता है enjoy करने। And to therefore जो मैं सोचती हूं, जो all my thoughts first उस समय के moments पे शरीर पे, या तो मेडिकल साइंस आजकल क्लियरली बताती है 95% डिजीजेस साइकोसोमेटिक, एंड थर्ड एटमॉस्फियर, फोर्थ चिल्ड्रन, all those who are around me. Fifth, मेरा destiny. इतने पर मुझे असर कर रहा है, तो किस पर ध्यान रखना चाहिए? किस पे ध्यान रखना चाहिए? अपने थॉट्स पे. तो दिस इज व्हाट आई हैव टू अंडरस्टैंड. अच्छा, एक बार हो गया, ठीक है, चलो हो तो गया, रियलाइजेशन, गलती कर ली. बट अगर मैं अभी तो सोचूं कि ये एनर्जी मेरे लिए रॉन्ग है, और जब मैं रॉन्ग समझ लूं, सेंसिबल इतना भी समझ ले, तो एटलीस्ट नेक्स्ट मेरा जो रिस्पॉन्स होगा वो कैसा होगा? आई कैन चूज, यस ये गलत है. लेकिन जब तक वो समझते नहीं कि गलत है, मतलब हम अपने आप को कंटिन्यू करते रहते हैं, और फिर हम कहते हैं कि पता नहीं सारा जीवन मुझे याद नहीं कि मैंने कुछ गलत किया. गलत नहीं किया वो याद नहीं है, वो मतलब हमने किया नहीं, लेकिन इधर क्रिएट किया, और इधर जो क्रिएट कर भी थी कितनी क्वांटिटी में क्रिएट किया, वहां मेरा डेस्टिनी फिक्स्ड हो गई. सो टू मेक अदर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर माय हर्ट, ये विशेष साइकिल ऑफ नेगेटिविटी. उसने ऐसा किया इसलिए मैंने ऐसे सोचा. अच्छा, मैंने ऐसे सोचा तो वो भी कैसे सोचेगा? हाउ मेनी ऑफ अस आर सो पावरफुल कि कोई कुछ भी सोचता रहे, करता रहे, लेकिन मैं फिर भी रिएक्ट नहीं करती. हमारे में से कौन इतना पावरफुल होता है? तो मैंने ऐसे सोचा, फिर वापस उसने वैसे किया. ये विशेष साइकिल ऑफ नेगेटिविटी. तो देयरफॉर आई फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू अंडरस्टैंड. अब हम कहेंगे रिएक्शन ये तो नॉर्मल है ना, नेचुरल है. नेचुरल की डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है. कौन सी चीज नेचुरल है? क्योंकि जो चीज अब नाउ फास्ट आप जवाब देंगे. अच्छा, एंगर, एंगर नॉर्मल है या पेशेंस नॉर्मल है? क्या कहेंगे? बोलते जाओ. एंगर नॉर्मल, पेशेंस नॉर्मल? पेशेंस. कंप्लेनिंग नॉर्मल, ग्रेटिट्यूड नॉर्मल? कॉम्पिटिशन, कोऑपरेशन? कोऑपरेशन. स्ट्रेस नॉर्मल, पीस नॉर्मल? ईगो, सेल्फ रिस्पेक्ट? सेल्फ रिस्पेक्ट नॉर्मल. इरिटेशन नॉर्मल, अंडरस्टैंडिंग नॉर्मल? क्रिटिसिज्म नॉर्मल है या एप्रिसिएशन नॉर्मल है? और जेलेसी नॉर्मल है, ब्लेसिंग्स नॉर्मल है? श्योर. देखो ये ब्रह्मा कुमारी इसका डेफिनेशन नहीं है. व्हाई? नॉर्मल की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना. जो चीज मैं नॉर्मल बोलूंगी ये तो नॉर्मल है, उसके लिए हम प्रयास करेंगे. जैसे 99 हमको पता है कि ये नॉर्मल है, तो अगर 99 मुझे वीकनेस भी लगती है, लेकिन हम कहते हैं ये तो नॉर्मल है ना. 99 नॉर्मल नहीं है, 97 नॉर्मल है बॉडी टेम्परेचर. फिर हम क्या करेंगे? ठीक है, नॉर्मल है, इट्स ओके. तो अगर हम जो चीज नॉर्मल बोल रहे हैं, मतलब हम उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करेंगे. जो चीज नॉर्मल है ही नहीं, तो स्ट्रेस आपने का नॉर्मल नहीं है, तो इसका मतलब अगर एनीवन सेइंग कि मैं बहुत स्ट्रेस्ड हूं, नेचुरली ना गुस्सा तो आएगा ही. नेचुरली कोई ऐसे क्रिटिसाइज करेगा तो रिएक्शन तो होगा ही. व्हेन आई से दिस, तो जब मैंने नॉर्मल कह दिया तो ऑटोमेटिकली हमारी जो एनर्जी है विल ट्राई टू गेट आउट ऑफ इट, क्योंकि दिस इज एबनॉर्मल. एंगर एबनॉर्मल, क्रिटिसिज्म एबनॉर्मल. तो जो चीज एबनॉर्मल होगी हम उसके लिए निकालेंगे. व्हाई टुडे वी आर नॉट एबल टू गेट आउट ऑफ द एंगर, बिकॉज हम सोचते इसको नॉर्मल है. तो एक तो नॉर्मल ये डेफिनेशन, दूसरा टू मैनेज द थॉट्स पॉजिटिवली बहुत इंपॉर्टेंट है पावर टू लर्न. क्योंकि जो मैं बहुत बार कभी कुछ क्रोध आता है ना तो हम कहते हैं कि ठीक है ना, अब मैं सीख गई. किसी को काम दिया उसने काम नहीं किया तो मैंने सीख लिया. क्या सीखा? कि आगे से ना किसके भरोसे में नहीं रहना है. राइट? हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? उसको काम दिया ना उसके भरोसे में नहीं रहना है. उसने नहीं किया ना, वन इज ओके, ठीक है ये तो हमने सीखा. बट व्हेन वी लर्न लाइक दैट फ्रॉम द सिचुएशन, हम क्रोध में हो रहे हैं, क्रोधित होके समझ रहे हैं या पेशेंस होके समझ रहे हैं? मैंने सीख लिया, अब किसके भरोसे में ये रखना ही नहीं. आई विल नेवर रिलाय ऑन एनीबडी. टू वेज है, वन इज दिस इज व्हाट वी लर्न, सेकेंड इज कि मैंने उसको कहा उसने नहीं सुना, ये मैंने सीखा कि मुझे आगे से मुझे नहीं बोलना है. वन इज ओके नॉर्मल. सेकेंड इज मैंने लर्न क्या किया, मैंने जब उसको कहा उसने नहीं किया मुझे फील हुआ, तो मेरा जो रिएक्शन था वो रॉन्ग था, वो मैंने समझा. देयरफॉर दैट द वे आई स्पोक टू हिम, वो मैंने समझा उसको ठीक करना है या उसने ठीक नहीं किया वो मैंने समझा. कभी कभी हम बहुत स्ट्रांगली उसको कह देते हैं, वो व्यक्ति नहीं मानता है, फिर भी वो उसी तरफ जाता है और वो गिर जाता है. कहते हैं बोल दिया ना, नहीं मानता है, अब मुझे बोलना ही नहीं है. मुझे बोलना नहीं है, दिस इज नॉट व्हाट वी लर्नड. मुझे लर्न क्या करना था? द वे आई स्पोक टू दैट पर्सन बिकॉज ऑफ विच उसने माना नहीं, दैट आई हैड टू लर्न. कि वो सेम आई हैव टू बी अवेयर of how I reacted last time and prepare oneself to respond in the right manner next time. इस बार मैं जो उसको कहूंगी या उसके नहीं सुनने के बाद जो मैं रिस्पॉन्ड करूंगी, वो मेरा जो ठीक नहीं था वो मैंने लर्न किया. उसने ठीक नहीं किया वो मैंने लर्न किया, वो तो क्रोध था. मैंने जो कंट्रीब्यूशन की थी उस सिचुएशन में क्रोध का, वो मुझे ठीक करना है. दैट इज व्हाट आई लर्नड. हम क्या कहते हैं, संबंध को बनाओ. व्हेन आई लर्न माय कंट्रीब्यूशन आई इंप्रूव द रिलेशनशिप. व्हेन आई फोकस ऑन हिज कंट्रीब्यूशन आई जस्ट इंक्रीज द गैप. होता है ना, वो तो ऐसे है, वो तो ऐसे है, वो तो ऐसे है. एक्चुअली हम गैप को क्या कर रहे होते हैं, इंक्रीज कर रहे होते हैं. तो इसलिए एक तो व्हाट आई लर्न्ड दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. और नेक्स्ट है जो भी मेरे कर्म है, एक होता है कि मुझे मुझे अच्छा मुझे खुशी मिले इसलिए हम करते हैं, और दूसरा है जो भी मिला उसमें खुश होके करना। खुश होके करने से मुझे खुशी मिलेगी और आई एम क्रिएटिंग हैप्पीनेस टू अदर्स। और जब मुझे जब मेरे हर कर्म दूसरे को खुशी देते हैं मुझे एक्चुअली देन आई हैव नथिंग टू बी हैप्पी। मुझे स्पेशली कुछ बाहर जाना भी नहीं पड़ता है। हर थॉट्स हमारा जितना सुख देने वाला होता है ना, सुखी वाला थॉट्स होता है। कभी कभी बहुत बार उसके लिए क्या चाहिए होता है, लेट गो, ठीक है हो गया, ओके फाइन, इट हैड टू हैपन। एंड जितना पावरफुल थॉट्स होता है उतना वो सुख देता है। हमने देखा कि कोई भी बात हो, कितनी भी सिचुएशन हो, लेकिन जब हम बहुत पावरफुल थॉट्स क्रिएट करते हैं तो एक्चुअली आई अट्रैक्ट दैट काइंड ऑफ सिचुएशन व्हेन आई क्रिएट पॉजिटिव पावरफुल थॉट्स। तो कुछ प्रॉब्लम थी हमारे मदर को, लौकिक मदर को कोई बहुत बड़ी इस तरह की बीमारी थी, 7-8 ईयर्स से थी, बिल्कुल बहुत ट्राई कर लिया कितने सारे डॉक्टर्स को लेकिन सॉल्व भी नहीं हुआ उसको, बहुत समय से चल रहा था। तो हमने कहा कि अब जैसे होता है ना कि जो पेशेंट है वो तो थोड़ा हताश हो जाता है, तो हमने कहा कि नहीं मुझे हताश नहीं होना है। आई स्टार्टेड कि अब हम एकदम खाली थॉट्स से उसको ठीक करेंगे। तो मैं कंटिन्यूसली एकदम पावरफुल थॉट्स क्रिएट करते गए कि मतलब वो एक पीक पे आ गया कि वो बिल्कुल टॉलरेट ही नहीं हो रहा था। तो बहुत पावरफुल थॉट्स क्रिएट करती गई एवरी डे इन द मॉर्निंग कि उसका जो भी सिचुएशन है वो बहुत ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है। बार बार हमने वेंट ऑन क्रिएटिंग, और मैंने एक टारगेट लिया था कि 21 डेज तक मुझे कंटिन्यूसली 10 मिनट्स एंड देन थ्रू आउट द डे कभी भी याद आए। जैसे कभी किसी कोई बीमार को याद करते तो हम क्या हो जाता है कि अरे बहुत बीमार है, बहुत जो फाइनली होना है वो होना है, लेकिन हम जितने बार याद करते हैं तो उतना तो डाउन स्वयं को तो कर ही लेते हैं। आई ट्राइड कि नहीं मुझे जो होना है वो होगा, जो भी उस सोल का डेस्टिनी है, लेकिन मुझे एकदम पावरफुल थॉट्स क्रिएट करते रहना है। क्योंकि जब तक ये सोचा नहीं था थोड़ा थोड़ा सोच चलता था कि क्या करे, इधर दिखाए उधर दिखाए। तो मैंने स्टार्ट किया कंटिन्यूसली कि यही क्रिएट करना है और यही विजन बनाना है। एंड आफ्टर 5 डेज तो हमारे सिस्टर ने कहा कि मेरे बाजू में ना एक बहन को भी ये सेम प्रॉब्लम है, उसने ऐसे ऐसे होम्योपैथिक किया है, तो होम्योपैथिक हम ट्राई करते हैं। तो कहा ठीक है ट्राई करते हैं। होम्योपैथी लिया विद इन 5 डेज के बाद लिया, फर्स्ट डोज लिया, सेकेंड डोज, 3 डोज के बाद 25% फर्क आने लगा, 1 वीक 50% फर्क, 2 वीक्स के बाद 75%, और 2 महीने के बाद 0। 7 years, 8 years, एंड द सेम डॉटर, उसको उसके सामने पेशेंट था लेकिन, और जब थॉट क्रिएट किया। तो इसलिए जितना हम पावरफुल थॉट्स क्रिएट करते हैं उतना हम वो सिचुएशन को नियर लेकर आते हैं, और जितना हम नियर लेके आते हैं, हमारे पावरफुल थॉट्स दूसरे के भी भाग्य को चेंज कर देता है. दैट्स द एनर्जी एवरी वन ऑफ अस हैज. तो एक तो देयरफॉर एक्चुअली लाइफ इज नथिंग बट रियली ऑलवेज एवरी मिनट क्रिएटिंग पावरफुल थॉट्स. जितना हमारे अंदर वो एनर्जी जमा होती है ना, हमको खुशी के लिए बहुत सारे डेस्टिनेशंस की जरूरत नहीं होती है. ये जो हम जाते हैं इधर जा, चलो 3 दिन की छुट्टी है, सैटरडे संडे चलो घूमने जाए, ये तो वाई बिकॉज हमारे अंदर नहीं है ना. हमको क्या चाहिए, दूसरी जगह चाहिए होता है कि यहां जाएंगे तो मिलेगा. बट दिस इज द रिजर्वायर. हम खुद ही हमारे सुख के रिजर्वायर है. तो वन इज आई बिकम वेरी पावरफुल, दिस इज मैनेजिंग द थॉट्स. एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज माइंड में, फोर्थ इज कंपैशन के थॉट्स. जैसे मैंने कर्म का एग्जाम्पल दिया था कि जितना माइंड में किसी ने कुछ भी गलती की जीवन में, बड़े से बड़ी गलती की, कितना हमारे अंदर फॉरगिविंग का नेचर होगा अंदर, उतना रियली यू आर चेंजिंग योर डेस्टिनी. एक गुवाहाटी की बात है, तो वो बहन उसको, मतलब हमारे सीनियर ब्रदर वहां गए थे, तो हम लोग भी थे साथ में. तो एक फैमिली आई तो कहा कि ये टीचर जो है ना, ये टीचर थी प्रोफेसर, बहुत डिप्रेशन की पेशेंट सिंस 12 इयर्स, और कितना भी उसको बोल दो, मतलब उस तो बहुत डिप्रेशन में है. उसको रोज 6 स्लिपिंग पिल्स दिया जा रहा था, और जैसे वो उठती थी वो उतनी वायलेंट थी कि जो हाथ में आता है उसको फेंक देती थी. तो घर वाले यही कोशिश करते थे कि जितना ये शांत सोती रहे घर में शांति रहे. तो सिंस लास्ट 12 इयर्स ये प्रॉब्लम है. बोला अगर आपका कुछ माइंड पावर कुछ कर सकता है तो दिखाओ, पता नहीं. तो अब हमारा पूरा एम था कि इसके 12 इयर्स पहले जाना कि क्या हुआ था, क्या उसको लेके आए, उसको कुछ भी पूछे वो खाली, मतलब द वे एक जैसे ना स्ट्रेंजर को पूछते, कुछ जवाब नहीं देना. एक दिन बीता, 15-20 मिनट जस्ट इंटरेक्शन होता था, दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी उसको एकदम लविंगली पूछते गए कि क्या है, और पूछ रहे थे कि कुछ याद आता है आपको. तो उसने थर्ड डे थोड़ा ओपन अप होना शुरू किया, क्योंकि वो यहां से एकदम पॉजिटिव एनर्जी लग रही थी. तो उसने कहा कि 12 साल पहले मेरे बच्चा, एक बच्चा घर में था, और एस इट इज 3 डॉटर्स पहले ही थे. जैसे वो सोल गर्भ में आई तो कहे मुझे पता नहीं बहुत ही नेगेटिव थॉट्स आते थे. ओके, फिर बाद में बच्चा जन्मा एंड ही वॉज अ मेल चाइल्ड. 3 डॉटर्स के बाद मेल चाइल्ड, कितनी खुशी होनी चाहिए. यहां बहुत खुशियां मन रही है बहुत, और इसके सामने जैसे वो नर्स बच्चे को लेकर आती है, उसका हाथ उसके गले पे जा रहा है बच्चे के. आधा घंटा पहले बच्चा जन्मा है. उसको लगा कि जैसे मैं इसको मार दूं, समझ में नहीं है. तो एकदम घर वालों ने ऑब्वियसली ये देख रहे थे टेंडेंसी इसकी, तो दूर किया. और बोला मुझे पता नहीं उसको देखते ही हमेशा ये फीलिंग होती थी कि बस उसको मार दो। उस बच्चे को कभी मैंने प्यार ही नहीं दिया। तो एक तो वो एंगर और दूसरा गिल्ट एट द सेम टाइम इतना स्ट्रांग था कि मुझे कुछ और कुछ अच्छा ही नहीं लगता था। एंड देयरफॉर बच्चे से हमेशा दूर ही रखते थे उसको। एंड दिस इज हाउ वो डिप्रेशन में चली गई। तो फिर उसको कहा कि आप एक ट्राई करो, कुछ भी बात हुई जो भी, उसको बोला कि तुम उससे को माफ करो, बार बार ये थॉट क्रिएट करो कि जो भी तुमने किया माफ करते, पूरे दिन में 11 बार करो। और बच्चे को भी सिखाया, 12 साल का हो गया था, उसको कहा कि तुम बार बार ये करो, आई एम सॉरी, अंदर से, क्योंकि ऊपर से तो नहीं बोल सकते, लेकिन 3 दिन उसको कहा कि आप ऐसे लेमन, उसको अच्छा लगने लगा जैसे जैसे वो बोलती थी सोचती थी। और कंटिन्यूस उसने फिर पूरे दिन करना शुरू कर दिया, मैं तुमको माफ करती हूँ। और उसके वो भी करता रहा, वो तो बच्चा ही था, उसको तो कुछ वैसे भी था ही नहीं। 3 दिन के बाद उसको सोई, दैट वॉज विदाउट पिल। उसने कहा 12 years, 500 डॉक्टर, 50 pills, लेकिन 3 दिन ये स्टेटमेंट, मुझे पहली बार बिना कुछ पिल किए नींद आई। और 3 दिन उसने प्रैक्टिस किया और धीरे धीरे जैसे ऐसे एकदम नॉर्मल हो गई। और नो पिल्स आफ्टर 6 डेज। और जैसे बच्चे को नॉर्मल जैसे होता है प्यार, वैसे होने लगा। तो क्या किया था, तो उसने कहा 6 pills एंड बाकी 10 pills फॉर द डिप्रेशन, 16 pills अ डे, और 6 कितने सारे साल से चला रहा है, नो डॉक्टर्स कुड क्रिएट कुड क्योर, आज मुझे केवल ये चीज। तो कितने बार क्या चाहिए होता है माइंड में, जिसका जो भी किसी ने कुछ किया, जितना हमारा फॉरगिविंग नेचर है, फॉरगिव करना पावरफुल थॉट है या होल्ड करना पावरफुल थॉट है, क्या करना है, बड़ी से बड़ी गलती की कैसे भी करी, अंदर से फॉरगिवनेस, ये हमारे बहुत सारे नेगेटिव डेस्टिनी को स्टॉप कर देता है जो अदरवाइज मुझे मिलना था। तो दिस इज देफो पॉजिटिव के लिए, इसलिए क्या बोलते हैं, क्षमा वीरों की पहचान है, बोलते हैं ना, जो भृगुजी मारी लात, क्षमा बड़ों को होत है छोटों को उत्पात। कहां कृष्ण का घट गया जब भृगुजी मारी लात, मतलब चाहे लात उसने मारी, बताते हैं ना, लेकिन उन्होंने उठ के क्या कहा, मेरे छाती तो कठोर है, कहीं आपको चोट तो नहीं लगी। दिस इज कॉल्ड पावरफुल थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स, इट्स ओके, नाउ इज द टाइम टू जस्ट क्रिएट पावरफुल थॉट्स। जितना वो पावरफुल थॉट्स होता है हमारा, उतनी हमारी एनर्जी सेव होती जाती है। और फिर इवन और जितनी सेव होती है एनर्जी, माइंड की एनर्जी सेव होती जाती है, माइंड थकता है तो हम क्या होते हैं, चिड़चिड़ा हो जाता है ना, बहुत थक गए, चिड़चिड़ापन। तो सारे नेगेटिव फीलिंग्स क्यों है, क्योंकि थक गया है। और क्यों थका है, क्योंकि ये पॉजिटिव पावरफुल थॉट्स नहीं कर रहे। तो वो है कि कितना हम पावरफुल थॉट्स क्रिएट करते रहते हैं सबके, एक्चुअली दैट मेक्स अस वेरी लाइट। और हमारी लाइटनेस हमारी बहुत बड़ा तकदीर है, बाकी तो आदमी की तक तो तकदीर है ही है। तो वन इज दिस पावरफुल थॉट्स, और उसके बाद हमारा जितना भी इट्स अ ट्री, संस्कार जो सीड है वो थॉट्स है। तो सीड कोई भी वृक्ष के लिए क्या करना होता है, सीड को वाटर करना होता है ना। तो वाटरिंग द थॉट्स, जितना इस पावरफुल एनर्जी से हम वाटर करते रहते हैं थॉट्स को, उतना वो थॉट्स वैसा वाला ग्रो होता जाता है। और देखो दीज आर, हम लोग बहुत बार क्या करते हैं कि परिवार ठीक रहे, संबंध मेरे अच्छा रहे, सो वी सेव, वी ट्राई टू सेव द ट्री। वाटर कहां करना होता है, सीड वाटर, थॉट्स को वाटर करना। व्हाट मैं क्या बोल रही हूं उस पर मेरा अटेंशन है, मैं क्या कर रही हूं मतलब इस पर हम फोकस करें, या मैं क्या सोच रही हूं उस पर हम फोकस करें इन रिलेशनशिप। व्हाट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं क्या सोच रही हूं। एंड नॉट ओनली दैट, दूसरा मेरे लिए क्या सोच रहा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ऑफिसेज में होता है कि हम लोग सोचते हैं ना कि जो भी जाता है ऑफिस से जा रहे हैं, एक्चुअली एवरी वन गोइंग फ्रॉम द ऑफिस इज अ पेरेंट। अगर वो ये सोच के विदा ले रहा है कि स्ट्रेस बहुत है, बहुत पॉलिटिक्स चल रहा है, मतलब दिस इज द फीलिंग एंड द पर्सन इज गोइंग फ्रॉम द ऑफिस, हम दुखी व्यक्ति को दुखी करके ऑफिस से भेजते हैं। तो व्हेन वी सेंड दुखी व्यक्ति, तो आने वाले भी कैसे होंगे नेक्स्ट डे मॉर्निंग में, क्योंकि स्ट्रेस, ये तो पॉलिटिक्स तो चलता ही है ऑफिस में। इस फीलिंग से हम ऑफिस में, सपोज हम अच्छी, हमारी इंपॉर्टेंट पोजीशन है, हम लोगों को भेजते हैं, तो आएगा स्ट्रेस में आएगा। सेंडिंग हैप्पी पीपल होम इज द ड्यूटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। व्हेन यू सेंड हैप्पी पीपल होम, यू कैन एक्सपेक्ट हैप्पी पीपल कमिंग टू द ऑफिस द नेक्स्ट डे। क्योंकि हर कोई व्यक्ति जो ऑफिस से जा रहा है, फाइनली व्हाट इज ही इज अ पेरेंट, वो यहां से पूरा पॉलिटिक्स लेके जाएगा, दर्द लेके जाएगा, वो दर्द कहां देगा। तो घर में हम पैसे के साथ साथ और क्या लेकर आते हैं, पैसे लेकर आते हैं, चीजें लेकर आते हैं, लेकिन ये भी साथ साथ लेकर आते हैं। और जब ये साथ में लेकर आते हैं तो क्या देंगे, इसलिए जैसे ही हम पहुंचते ऑफिस में, घर में पहुंचते देखते कल एग्जाम है और ये तो मोबाइल पे बैठा है, फर्स्ट रिएक्शन क्या होगा। इट्स नॉट कि हमको हमने किया, लेकिन हम लाए क्या थे वहां से। तो एवरीथिंग व्हाट आई एम टेकिंग आई एम एक्चुअली गिविंग, और जब मैं देती हूं, मैंने बहुत जाके गुस्सा किया उसके, वो मोबाइल कर रहा था, तो मैं क्या कर रही हूं, अब वो तो मोबाइल छोड़ के कमरे में चला गया गुस्से में, अब तुम बैठे रहो, तुम्हारे पास आएगा ही नहीं, बोले बुला रहे लेकिन नहीं आता है। एंड नाउ मॉर्निंग अगेन इट इज द सेम। सो व्हेन what we are giving to our people around us is what actually we are giving to the family, और फिर हम वही रिस्पॉन्स. तो अगर वो स्ट्रेस्ड फैमिली से आएगा घर में, क्या हो जाएगा उसको? स्ट्रेस फैमिली से ऑफिस में आ रहा है, हाउ विल द परफॉर्मेंस बी? कैसा परफॉर्मेंस होगा? तो इसलिए सेंडिंग पीपल, हैप्पी पीपल होम, देन यू कैन एक्सपेक्ट हैप्पी पीपल कमिंग बैक टू द ऑफिस. एंड देयरफॉर हमारी सक्सेस इज नॉट कि हम हाउ वेल वी हैव डन इन द ऑर्गेनाइजेशन, बट हाउ वी आर एस एन ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज अवर सक्सेस. हम कंपनी प्रोग्रेस कर लेगी, लेकिन मेरी प्रोग्रेस इज माई पीपल, दैट इज द प्रोग्रेस. आपको याद है ना डॉक्टर अब्दुल कलाम का बहुत अच्छा, जब उन्होंने फर्स्ट टाइम जब वो डॉक्टर धवन थे उनके चीफ, और फर्स्ट टाइम जब वो रॉकेट सेंड किया था विच वॉज अ फेलियर 1981 में वो था, और वो फेलियर हुआ तो जबकि जब वो रॉकेट को जब लॉन्च करने वाले थे तो कंप्यूटर में एरर आ गया, एंड देयर वाज सिक्स साइंटिस्ट, और सबको डिसाइड करना था भी क्या करें, बिकॉज पूरे देश की आंखें थी कि अभी ये रॉकेट लॉन्च होना है. डॉक्टर धवन लीड कर, डॉक्टर अब्दुल कलाम लीड कर रहे थे, उन्होंने कहा कि विल गो बाय द कंप्यूटर विल डू इट, और वो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरा, अटर फेलियर. और फिर बाद में तो बहुत बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर धवन थे, उन्होंने कहा कि क्योंकि सब लोग को पूछना है कि आखिर ये कैसा हुआ, क्यों हुआ, तो उन्होंने क्या कहा, डॉक्टर धवन ने कहा डॉक्टर अब्दुल कलाम को आप नहीं जाओगे, मैं जाऊंगा, और उन्होंने उस कॉन्फ्रेंस को लीड किया कि मैं मानता हूं कि ये बहुत बड़ा फेलियर हुआ है, लेकिन आई ट्रस्ट माई टीम, वो फिर भी दे विल डू द बेस्ट एंड दे विल कम आउट विद द बेस्ट रिजल्ट. और फिर आफ्टर वी नो द रियलिटी, एक साल के बाद फिर वो रॉकेट लॉन्च हुआ और वो कंप्लीट सक्सेसफुल हुआ. तब डॉक्टर धवन ने कहा नाउ यू गो. दैट ही लर्न्ड द फर्स्ट चैप्टर एज अ लीडरशिप, कि जब कोई गलती होती है तो मैंने किया, और जब कुछ अच्छा हुआ तो तुमने किया. ये सिंपल छोटा जेस्चर ऑफ त्याग उनके माइंड में इतना बड़ा इंप्रेशन छोड़ दिया कि डॉक्टर, उन्होंने इतना उसमें प्रोग्रेस किया, दैट इज कॉल्ड द मिसाइल मैन. डॉक्टर अब्दुल कलाम को उन्होंने अपने बुक में लिखा संस्मरण के, दैट वॉज माई टर्निंग पॉइंट, वेन एनीथिंग रॉन्ग हैपन्स आई डिड इट. तो इफ आई कैन क्रिएट अ कल्चर इन द ऑफिस, तो क्या हो जाएगा, आई कैन सेंड हैप्पी पीपल होम, और वो खुशी उसके लिए, ये मेरी ये इन्वेस्टमेंट है. वी इन्वेस्ट इन रिसोर्सेस, लेकिन स्पिरिचुअलिटी कहती इन्वेस्ट इन पीपल. पीपल के इन्वेस्टमेंट में क्या चाहिए होता है? थोड़ा सा त्याग, थोड़ा सा एप्रिसिएशन, दैट कीप्स द पीपल हैप्पी. तो दिस इज व्हेन आई हैव दिस क्वालिटीज, एप्रिसिएशन, त्याग, हमारा फॉरगिवनेस, माइंड कैसा होगा, नॉट ओनली पॉजिटिव बट बहुत पावरफुल. एंड इतना जितना पावरफुल होगा उतना वो और एफिशिएंट होके और बड़ा काम कर सकता है. ये फोन की बैटरी बहुत थोड़ी होती है ना, तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि जल्दी जल्दी बात करो. बहुत कम बैटरी है तो जो इम्पोर्टेंट है वो बात करते हैं क्योंकि बैटरी बहुत कम है. लेकिन यहां माइंड की बैटरी कम होती है तो क्या कर रहे होते हैं, बहुत सारी बातें बोल देते जो मेन बातें बोलनी होती है. तो इसलिए ऑलवेज डिस्चार्ज्ड पोजीशन में है. और दिस इज व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी, चार्जिंग. तो चार्जिंग मुझे कोई और से नहीं चाहिए होता है, चार्जिंग किससे चाहिए होता है, माय ओन पावरफुल थॉट्स. सिंपल है, एप्रिसिएशन, चाहे इतना सा भी कोई अच्छा कर रहा है, एप्रिसिएशन. लास्ट में एक छोटा सा बताते हैं, वो वाइफ एक बार, हस्बैंड आता है घर में, देखता है कि शाम के समय चिप्स खा रही है, वो मैच देख रही है और वो चिप्स खा रही है, और घर जैसे पड़ा था वैसा का वैसा है, सुबह जैसे छोड़ के गए थे, ड्राइंग रूम एकदम वैसा का वैसा. तो वो आके बोलता है कि व्हाट इज दिस, आपको हुआ क्या है, बोलो कुछ नहीं, अपना वापस देखती जा रही है. अच्छा, फिर वो बेडरूम में जाता है, जैसे सुबह छोड़ के गए थे वैसे चद्दर पड़ी है, कुछ नहीं, बोलो क्या बात है, हुआ क्या, बोलो कुछ नहीं, तो अपना मजे से टीवी देख रही है. किचन में गए, जैसे छोड़ा था वैसा ही था, पूछा क्या हुआ, नहीं कुछ नहीं, बैठ के जोर जोर से हिला के बोले बात क्या है, बोला रोज तुम ऑफिस से आते हो ना तो आपका एक स्टैंडर्ड डायलॉग रहता है, तुम सारे दिन यहां रह के करती क्या हो, आज मैंने कुछ नहीं किया. एप्रिसिएशन, एवरीवन, इतना सा भी कोई कंट्रीब्यूट कर रहा है, इज वर्थ एप्रिशिएटिंग. और उसको एप्रिशिएट करना मतलब मेरी एनर्जी बढ़ाना, उसकी एनर्जी बढ़ाना. एंड दिस वे हम अगर सबको एप्रिशिएट करें तो क्या होता है, तो हमारे एक भाई थे, उनकी डॉटर गाड़ी चलाती थी, तो वो हमेशा कहते थे, वो LLM है लेकिन फादर को कहीं भी लेके जाना था तो वो ही जाती थी, वो सबको इंट्रोड्यूस करते, आपको पता है मेरा ड्राइवर कौन है, LLM ड्राइवर है मेरा, मोदी जी के पास भी ऐसा ड्राइवर नहीं होगा. तो उसको और इच्छा होती थी कि मैं चलाऊ फादर के लिए. When you are appreciating, you are actually increasing the morale and you are making them binded to your work. This is called. तो ऐसे powerful thoughts हो तो mind क्या होगा? This is what is spirituality. तो अगर हम ये करेंगे तो how is, जो हम train होंगे यहाँ, तो spirituality एंड मेडिटेशन. मेडिटेशन में हमारे अंदर वो एनर्जी आती है जो ग्राउंडिंग बनाती है, एंड ऑटोमेटिक वो एनर्जी से हमारी, जब हमारी ग्राउंडिंग पावरफुल होती है तो जो भी विजडम की बातें हैं हम सुनते हैं. व्हाई देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिटेशन ऑलवेज, क्योंकि जो आप ग्राउंड, अगर आपका पावरफुल होगा तो आप सीड थोड़ा सा भी डालोगे ना वो एकदम. और वैसे हम कितनी सारी बातें सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है, फॉरवर्ड करते हैं, पर खुद के लाइफ में है ही नहीं क्योंकि ग्राउंडिंग नहीं है. तो मेडिटेशन ये हमें हेल्प करता है. सो दिस इज सो विल ट्राई लिटिल बिट मेडिटेशन. ओके. माइंड को हम एकदम कुछ समय के लिए रिवाइंड करें, अपने आप को एक पॉइंट ऑफ लाइट की फीलिंग में लेके आए. जो भी मेरे साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं सब सोल्स हैं, उन सब के पास प्लस माइनस सारी क्वालिटीज हैं. देखिए अपने आप को, जो भी क्वालिटीज उनमें है, चाहे एक भी क्वालिटी है, मुझे उसको अप्रिशिएट करना है. उन सब सोल्स को अपने सामने लेकर आए. ऐसा सोल, उस सोल को हम देख रहे हैं, अभी तक जो भी हुआ, मैंने भी कुछ रॉन्ग किया, चाहे उन्होंने भी किया, आज इस पवित्र वातावरण में उस आत्मा के साथ क्षमा, जो भी हुआ मैं सॉरी हूं, और उस सोल के लिए बहुत हाई फीलिंग्स, आप महान हो, आप महान हो. सारे सोल्स सामने लेकर आ जाए. आज से आप सबके लिए मुझे केवल और केवल गुड विशेस, पावरफुल विशेस. मैं माफ करती हूं, और अगर मैंने कुछ भी किया, कितने सारे बर्ड्स का भी है, आई एम सॉरी. माफ करना है, माफी लेनी है, फॉरगिवनेस. और अब से जो भी मेरे साथ होगा उनके हर गुण को अप्रिशिएट करेंगे. ओम.